With you, my dear brothers and sisters,
bhai aur bhaino, main admiration for Elder Neil Anderson ke liye pyar prasant prayer karta hu. Unke niyukt ki pradhan dwarta pap ki prabhu ke aaye hai. प्रधान थॉमस एस मॉन्सन के द्वारा गया अपने जीवन भर प्रधान थॉमसन अपने युक्ति पर पवित्रता की ताकि प्रभु की इच्छा किए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता को सब दिया था उसे प्रेजेंट मॉन्सन ने किया था धन्यवाद है प्रेजेंट मॉन्सन के कि आपने वो शक्ति इसके लिए और हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं एल्डर एंडरसन के हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नमूना और शिक्षाओं को अपनाते हैं उन्होंने अपने सिखलाया कि कैसे प्रार्थना की जाती है उसकी प्रार्थनाओं से हमसे आवश्यक शब्दों को सीख सकते हैं हम प्रभु की प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं और अन्य प्रार्थना मैं प्रभु की प्रार्थना को करता हूँ Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. प्रभु की प्रार्थना को नया नियम में दो बार और मोमन की पुस्तक में एक बार अभिलिखित किया गया है उसे धर्मशास्त्र जोसेफ स्मिथ अनुवाद में भी सम्मिलित किया गया है जहां इन दो वाक्यों द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया पहला जिस प्रकार हमें अपने पापों से क्षमा क्यों जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं दूसरा हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा माफी पर स्पष्टकरण मालिक के अन्य घटनाओं द्वारा संपत्तित किया गया है उन्होंने अपने दासों से कहा क्योंकि तुमने एक दूसरे के अपराध को क्षमा किया है मैं भी प्रभु तुम्हें माफ करता हूँ अन्य शब्दों में अगर कोई माफी चाहता है तो माफ करना चाहिए परीक्षा पर स्पष्ट कर उपयोगी है निश्चित के ईश्वर द्वारा हमें परीक्षा में ना डालेगा प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो जैसे प्रभु ने प्रार्थना के चार अनुवाद के जैसे है उन्हें शुरुआत हमारे पिता के स्वागत से होती है जो ईश्वर और उनके बच्चों के बीच नजदीकी संबंध का महत्व देता है वाक्य तेरा नाम पवित्र माना जाए उसके उत्तर में आराधना भरी विचार को प्रकाश डालता है जैसे हमें महसूस करना चाहिए जब हमारे प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा पूरी हो उस विचार को अभिव्यक्त करते हैं जैसे चर्चा होती है उनके अनुरोध दिन के रोटी में अध्ययन भरण पोषण की जरूरत सम्मिलित करता है यीशु जिन्होंने अपने आप को जीवन की रोटी कहा है कि एक वादा किया जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा और हम रोटी और पानी योग्यता से लें हम अभी वादा करते हैं कि उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहेगा वह आत्मिक पोषण है जिससे अन्य तारीख से नहीं प्राप्त किया हो सकता है जब प्रभु अपनी प्रार्थना की संपत्ति करते थे वो ईश्वर की महान शक्ति और महिमा की प्रति आभारी करते हैं आमीन की साथ समाप्त करते हैं हमारी प्रार्थना की संपत्ति भी आमीन से होती है पहले ही उसका उच्चारण भिन्न रूप से भिन्न भिन्न भाषाओं में होता है उसका समय उसका मतलब सचमुच ये वास्तव में आमीन को पवित्र से जोड़ने से एक प्रवचन का एक प्रार्थना सत्य घोषित होती है कि मेरी भी पवित्र घोषणा है पहले अपने चेलों से कहकर कि वेत्र दहराना या बचने या तारीख से प्रार्थना करना इसके द्वारा प्रभु ने अपनी प्रार्थना की प्रस्तावना की इस प्रकार प्रभु ने प्रार्थना उस अपने से नमूना को प्रस्तुत किया और ऐसी प्रार्थना नहीं कि जैसे मालिक सिर्फ चाहते हैं कि हम ईश्वर की मदद के लिए प्रार्थना करने, जबकि हम निरंतर प्रयत्न ताकि पाप का विरोध कर और धार्मिक जीवन से सकें। प्रभु की अन्य प्रार्थना भी सीक्रेट है, अपने चेलों के लिए प्रशाली रूप से अपने पिता के अनु अपने मन में सोचिए कि दुनिया के उद्धार करता प्रार्थना में घुटने से जैसे कहा, This word spake Jesus, lift up his voice heaven and said, Father, glorify thy son, that thy son also may glorify thee. I have finished the work which thou hast gavest me to do, for I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them. And I have known surely that I came out of from thee, and they have believed that thou didst send me. मैंने उनके लिए विनती करता हूँ। प्रभु की प्रार्थना से हम सीखते हैं कि कितने सहयोग से पिता के साथ हमारे मध्यस्थ और वकील के रूप में अपनी जिम्मेदारी को वो महसूस करते हैं, उतने शौक, उतने आदेश के पालन करने और अंत तक सहने के लिए हमें अपनी जिम्मेदार को महसूस करना चाहिए। प्राचीन अमेरिका के लोगों के लिए यीशु द्वारा एक प्रदान के कई अभिलेख वर्णन करते हैं, जिस समय वो पिता के हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, उस समय हमारी आत्माओं में जो आनंद भरी हुआ था, वैसे आनंद कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर यीशु ने कहा, अपने विश्वास के कारण तुम धन्य हो, और सुनो, मेरे आनंद परिपूर्ण है। यीशु ने एकता के लिए निवेदन की, हे पिता, उन्हें कहा, मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ में विश्वास करें, जिससे कि वो उनके अंदर प्रकार होकर प्रकार पिता अपने मुझ में है, कि हमको ही हम भी एकता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिल और एक मन के हो प्रभु के चुनने हुए और अपने प्रियजनों के साथ, को हम खुद और अपने पड़ोसियों के बीच आपसी संबंध और सम्मान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम दूसरे के लिए प्रभाव करेंगे, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जेम्स ने सिखलाया, क्योंकि धर्म में जान की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु द्वारा प्रार्थना पर अनेक सब लिखा गया है। उन्होंने अपने चेलों से कहा, इसलिए तुम पिता से सदैव मेरे नाम से प्रार्थना करो। उद्धारकर्ता ने ये भी कहा, तुम सदैव मेरे नाम पर पिता से अपने परिवार में प्रार्थना करिए। आज्ञादारी से हम पर सबक को लगाव कर सकते हो, जब हम यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्ग पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रभु की एक और प्रार्थना एक सबक को सिखलाती है, जो तीन क्रमवार चरणों में दोहराई गई है। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तुमने लोगों को जिन्होंने मेरे चुना है पवित्र आत्मा दिया है। हे पिता, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जिन्हें तुम भी लोग इनके बातों पर विश्वास करो, उन सभी को पवित्र आत्मा देना। हे पिता, तुम इन्हें पवित्र आत्मा के इसलिए दिए, ये मुझ में विश्वास करते हैं। अगर पवित्र आत्मा का सचार उतना आवश्यक है, हम पे भी उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम सभी निमंत्रण और बच्चों के मदद करने, ताकि पवित्र आत्मा के तोहफा वशित कर सकें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अच्छाई के लिए आवश्यक शक्ति बन सकता है, जब हम इस लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने तरीके को सिखाया है, जिनके द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुधारी जा सकती है। उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने कहा है, धार्मिक का गीत मुझ में प्रार्थना है, और उसका जवाब है सिरों पर आशीर्वाद के रूप में है। प्रार्थना का उपवास द्वारा सुधारी जा सकती है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अभी से प्रार्थना और उपवास करो। उपवास में बुद्धि के नेताओं प्रधान जोसेफ स्मिथ द्वारा की गया था, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि बहुत ज्यादा करने भी कोई चीज है। एक इंसान तब तक उपवास और प्रार्थना कर सकता है जब वो अपने आप को मार नहीं दे, और उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसमें बुद्धिमानी है। प्रभु एक साधारण प्रार्थना को सुन सकता है जो विश्वास के जय को शब्दों में वो उपवास को मांगेगा, जो जिस काम के जितनी तड़पड़ाहट और प्रभावशाली से प्रभु वो स्वीकार करेगा जो प्राप्त है, जो अधिक प्रशंसा और संतुष्टि और साथ होगी उसकी तुलना जो बहुत लंबी और अनावश्यक होगी। बहुत ज्यादा या अनुक्षा के धरना हमारी प्रार्थना की लंबाई पर भी लगा हो सकती है। गिरजाघर सभा में एक संपत्ति प्रार्थना के लिए जरूरी नहीं है कि इस प्रति संदेश को संसारिक समृद्धि कर हो, और बिना कार्यक्रम का प्रचार होने की जरूरी नहीं है। नीची प्रार्थना उतनी लंबी हो सकती है जितना हम चाहते हैं, पर सार्वजनिक प्रार्थनाओं छोटी प्रचारिक होना चाहिए। प्रभु का परिवार आत्मा हमारे साथ है, या जो हो उसके ऊपर घोषणा होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना को अन्य तरीके से सुधारी जा सकती है। हम उचित शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष सम्मान ईश्वर का संबोधित करेंगे, जबकि दैनिक और प्रसाद के संसारिक अर्चन और भी हो रहे हैं। हम कहा गए हैं कि प्रार्थना को औपचारिक उचित भाषा की रक्षा करेंगे। हमारे प्रार्थना में यू यो और योज की जा सकती है, हम और आप और ये सब। ऐसा करने से हम विनम्र बन में मदद मिलती है, वो हमारी प्रार्थनाओं में सुंदरता ला सकता है। धर्मशास्त्र घोष कहता है, प्रार्थना व्यक्तिगत आयोग से शुरू होती है। देखो, प्रभु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलना तो वो उस पर भीतर आता, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। वो द्वारा खुलता है जब हम अपने स्वर्ग पिता और यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करते हैं। हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए? जब भी हमारी इच्छा हो। एल्मा ने कहा, अपनी सभी कामों के लिए प्रभु से राय लो और वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी निर्देश करेगा। और रात को जब तुम वर्णन करने जाओ, प्रभु के स्मरण करो, और जब भोर को हो तब परमेश्वर के प्रति तुम्हारा हृदय होना चाहिए और तुम्हें ये सब कीजिए। यीशु ने अपने चेलों से याद दिलाया कि वो अपने दिलों में हमेशा प्रार्थना करें। गिरजा घर के सदस्य के प्रार्थनाओं है कि परिवार प्रार्थनाओं में प्रत्येक सुबह और शाम अपने घुटनों पर और दैनिक व्यक्ति प्रार्थना करें और भोजन की आशीर्वाद दें। प्रधान मोन्सन ने कहा, जब हम प्रभु से अपनी परिवार और व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, हम उन पर विश्वास और भरोसा के साथ करें, और ऐसी तरह संसारिक और आत्मीय आशीर्वादों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब विनती करें जैसे यीशु प्रभु ने प्रार्थना में की, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह दुनिया के उद्धारकर्ता, जिन्होंने अपनी रक्त से हमें मुक्त किया है, हमारे मुक्तिदाता और आदेश हैं। उन्होंने मरणशाली जीवन को संपत्ति, उन्होंने प्रार्थना की है। परम पिता पुत्र के रूप में पिता के इच्छाकार अनुसार हो, उसे महत्वान समय पर उद्धारकर्ता ने चिल्लाया, पिता तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो और हमेशा महिमा तुम्हारी हो। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी इच्छा हो।
Thy will be done.
और हम प्रार्थना करें कि प्रभु का राज्य पृथ्वी पर हो, कि लोग तैयार रहें, उन दिनों के लिए जब प्रभु आएगा अपनी महिमा की चमक में, उस ईश्वर के राज्य के मिलने के लिए जो पृथ्वी पर है। हमारी दैनिक जीवन में, हमारी नेक समय में, हम उस सम्पूर्ण से प्रभु के संग शब्दों को लागू करें। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।